भाग ले रहा है, लेकिन इस यात्रा का मुख्य जो केंद्र है वो तो भगवान जगन्नाथ। ये लख लख जनता श्री जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्ति करने के लिए ही जाते हैं। ये जगन्नाथ दया सिंधुर बंधो सकल जगतांग सिंधु सतयो हो, दया सिंधु दया के समुद्र पतित पावन, उनका मंदिर के नियम रखे रखे हैं सेवकगण कि केवल संस्कारी हिंदू जन समुदाय श्री मंदिर में प्रवेश करके उनके दर्शन कर सकते हैं। अरे जगन्नाथ जी तो जगतनाथ है, पतितनाथ है, दीन बंधु है, तो उनके लिए कौन से मृक्ष पुलिंद बौद्ध सबर ब्राह्मण वैश्य क्षेत्रीय ये सब तो कुछ बात विचार है ही नहीं उनके लिए। तो उन्होंने बोले ठीक है, आपने सेवकों की इच्छा को मना नहीं करते, बोले ठीक है आप लोग अपना नियम किए, लेकिन मेरा भी अपना नियम है, क्या मैं भी एक बार बाहर निकलूंगा कि जो लोग मुझे मेरे मंदिर में प्रवेश करके मुझे दर्शन नहीं कर पाते हैं वो क्या दर्शन से वंचित हो जाएंगे? हाँ दर्शन आने उनका संस्कार नहीं, उनके योग्यता नहीं, हो आओ इसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं, हो इसी मंदिर में नहीं आ सकते, आप लोग का नियम लगे, आपका नियम रहो काम रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बाहर जा सकता हूँ ना। आप सर्वेश्वर परमेश्वर है, आप क्या स्वर्ग स्वाधीन है, मैं जानूंगा, इसलिए ना वो जो लोग नहीं आते उनको देखूंगा। देखिए हम जाते हैं भगवान को दर्शन कर ले, लेकिन बड़े दूर दूरांत से उत्कंठा से जाते हैं, कभी मंदिर बंद हो जाता है, कभी दर्शन होता है या नहीं होता, भीड़ में कैसे होता कैसे नहीं होता ये भगवान जाने और आप लोग जाने। लेकिन भगवान जब निकलेंगे दर्शन करने के लिए आप लोगों के, तब फिर बताओ, तो ऐसा नहीं हो सकता उनको दर्शन ना हो भीड़ भाड़ में, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो अपने हिसाब से आदब कायदे से आते, अरे सबसे ऊंचे में बैठेंगे आकर, एक रथ है, रथ है, ऐसा तैसा गाड़ी नहीं है, तीन चार व्हीलर वाला, हम जैसे टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर सिर्फ गाड़ी करते हैं, ऐसा गाड़ी नहीं। ओ रे रथ तो रथ ही होता, आप रथ देखते होंगे जगन्नाथ जी के रथ 22-23 हाथ के, हाँ इतने बड़े उत्साह और रे ऊपर में बैठेंगे आदमी, सब 5-6 फुट वाले हैं, वो 20 फुट के ऊपर बैठेंगे, 20 फीट के ऊपर आसन लगाकर बैठेंगे, ऊपर से देखेंगे। हम लोग फिल्म हॉल में जाते हैं नीचे बैठ कर के ऊपर को देखते हैं, हमारे आधुनिक नीचे बैठेंगे, इसी होता ना लोग नीचे नीचे बैठते हैं, ऊपर स्टेज होता तो इसी देखते हैं सर उठा करके, हम लोग देखेंगे बड़े सर उठा कर देखेंगे, लेकिन ठाकुर जी को देखेंगे वो तो ऊपर वाले हैं ना और नीचे, तो 20 फुट के ऊपर आसन लगा करके एक दलित पतित जन को देखते हैं, भक्त जन को ऊपर बैठ के देखते हैं, उनके नजर से कोई बाहर नहीं जा सकता, क्यों कि उनके आंख तो छोटे छोटे नहीं, पूरा शरीर ही उनके आंख ही तो है, और क्या उनके संपूर्ण श्री विग्रह में दो मुख्य अंग है, महान सबसे बड़ा बड़ा अंग है, तो आंख चका चका आंख, दो आंख ही हुई है, तो दोनों आंख से ऐसे दृष्टि डालते हैं, और केवल रूप नहीं सीधा सीधा, ओ आजकल एक मेडिकल में टेस्ट करने के लिए MRI करके एक मशीन है, सीधा आप 60 पॉइंट पहन करके उसके अंदर सो जाओ, वो आपके अंदर का टिट बिट फोटो खींच लेता है ना, वो देख रहा नहीं ऊपर में कितने स्वेटर पहनो शर्ट पहनो चमड़ा हड्डी कुछ नहीं, अंदर का पूरा डिटेल फोटो खींच कर लाता। अरे ये MRI के मारो गुली, ये क्या वजह, भगवान की दृष्टि के सामने MRI कुछ नहीं, उनका क्या पावर है, वो रथ में बैठ करके कोसों कोसों दूर से जो सामने आएगा उसका रियल MRI कर देते, उसका अंदर अणु परमाणु पर्यंत देख लेते हैं, केवल ये MRI तो केवल मैटर देखता है, तो मैटर नहीं देखते हैं भावग्राही जनार्दन, वो भाव को देखते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर प्लानिंग, एवरीथिंग ही कैन सी उनका आंख से, वो देख लें बैठ के देखते हैं, तो उनसे कोई हम छिपा नहीं सकते हैं, कोई उनसे बच नहीं सकते, तो देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार दृष्टि के सामने कोई आ जाए, इस प्रकार जब भगवान देखने के लिए मन बना करके आते हैं, मैं देखना चाहता हूं, तो उसी समय जो भगवान को देख लेगा तो बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाएगा। इसलिए कहते रथे तू वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, रथ में भगवान को दर्शन करने से फिर तो पुनर्जन्म नहीं, रथ में देखना ये बहुत बड़ी सौभाग्य। आप मंदिर के अंदर जाकर देखो, डेली प्रणाम करो, कुछ और अर्पण करो, कुछ करो, वो जो है उससे कई गुना सहस्र गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। जब भगवान देखना आते हैं आपको, आप देखेंगे भगवान का देखने की इच्छा है, यहाँ दूसरे में हमारा देखने की इच्छा, भगवान की इच्छा है कि नहीं क्या पता, लेकिन यहाँ भगवान के देखने की इच्छा है तो कोई बचेगा उससे? कोई नहीं बच। अरे वह हम लोग की जनता भी देखना चाहता है और भगवान भी देखना चाहती है, यही तो मिलन, यही अद्भुत महामिलन है भक्त और भगवान का। तो रथ यात्रा ये मिलन यात्रा है, महामिलन यात्रा है, भक्त और भगवान के दोनों भाव के मिलन होता है। अनेक दिन से प्यासी भक्त देखना चाहता है और उनके प्यास को थोड़ा एक्सपेडाइट कर देते हैं भगवान, जान प्रे भगवान कैसे स्वभाव ही है, थोड़ा ज्यादा बढ़ाने के बाद फिर मजा आता है। तो इसलिए 15 दिन तक तो बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं, नो दर्शन। जो नित्य नियम पूर्वक उनके सेवक भी दर्शन करना चाहे उनकी बंद कर, रोक लगा नहीं, मैं बीमार हाई फीवर है, नहीं आ सकते दर्शन बार लो। 15 दिन तक तो श्रीमुख दर्शन देते नहीं है, और जो नित्य दर्शन करते हैं उनका उत्कंठा प्रबल से प्रबल तरह प्रबल तम को प्राप्त होता, एक बार टॉपमोस्ट डिग्री तक जाता, सुपरलेटिव डिग्री चलता। तो इसी डिग्री में जा करके भगवान फिर नवजोवन दर्शन दे करके आ करके उच्च सिंहासन पर बैठ जाते हैं, बोले अब देखने की, अब मैं भी देखाऊंगा आप भी देखोगे, दोनों को देखेंगे। ये दृश्य महोत्सव है। इसलिए ये रथ यात्रा महोत्सव का पहले दिन जो शुरू होता है, रथ यात्रा का शुरुआत, तो उसका नाम है नेत्र उत्सव। यद्यपि इसमें भगवान के नेत्र में अंगराग किया जाता है, लेकिन वास्तविक नेत्र उत्सव का असली अर्थ है फेस्टिवल फॉर द आईज। हम जितने भक्तगण है, दर्शनाभिलाषी हैं, सबके आंखों के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। क्यों? श्री जगन्नाथ के श्रीमुख दर्शन करना इतने दिन बाद, यही बड़ा फेस्टिवल, यही बड़ा उत्सव। कई जगह में भक्तों को ऐसे भाव दिए हैं, अगर किसी का आंख है और आंख में भी देखने का शक्ति है और भगवान के श्रीमुख दर्शन नहीं कर पाया, तो आंख आंख नहीं है, ये तो कांच की गोली होगा या मरुचंद्रिका होगा ना। आंख हो करके रूप दर्शन करके दृष्टि शक्ति रखने क्षमता रख करके और भगवान को नहीं देखा तब यूज़लेस। तो भगवान को देखना चाहिए। जब भगवान हमको देखना चाहते, क्या मैचिंग है ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट काम बन जाए। जब भगवान आपको देखना चाहते हैं, इससे अगर आप भगवान को देख लें तो फिर कहना है क्या। तो ये भाव है रथ यात्रा के। यद्यपि अभी रथ भगवान की कोई भी कार्य होता है उसका अनेक कारण हो सकता है, वो होता भी है भगवान, क्योंकि वो तो सामान्य काम नहीं करेंगे, उनकी तो संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड के वही पालनहार है, तो सभी के लिए एक साथ में काम करते हैं, तो उनके कार्य कुछ साधारण नहीं होता। तो इसलिए अशेष अशेष कारण निकल सकता है, अनेक अनेक भाव हो सकता है। हम छार जीव उनको क्या वर्णन कर सकते हैं, लेकिन कोई एकाध भाव की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है, महाराज इंद्रदिम्न जो सत्ययुग के राजा थे, जो इसी जगन्नाथ दारु ब्रह्म के प्रतिष्ठापक राजा करके जिनको श्रेय प्राप्त हुआ, उसके पहले श्री जगन्नाथ दूसरे फर्म में रहते, नील माधव के रूप में रहते थे, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में तो प्रतिष्ठा श्री इंद्रदिम्न महाराज ने किए। भले इतिहास उसको माने ना माने, हु केयर्स दिस इतिहास, इतिहास तो आजकल का है, लेकिन पौराणिक कथन के अनुसार श्री इंद्रदिम्न महाराज की श्रीमती जी का नाम थे गुंडीचा। काल मैंने बताया था जो गुंडीचा क्लिनिंग, ये गुंडीचा नाम जो है ये महारानी श्री पाठरानी है इंद्रदिन महाराज के, उनके नाम था गुंडीचा देवी। उन्हीं के निवास स्थली जहां पर श्री दारु विग्रह के निर्माण हुआ था, वही महावेदी, वही यज्ञ स्थली, तो वहीं पर वो जाते हैं। उसका पीछे ऐसे की मदंती है, श्री इंद्रद्युम्न महाराज सपत्निक, सब परिवार तो उनके ही नहीं, दोनों ही थे, पूरे राज्य प्रजा समुदाय लेकर के न जाने उनके जीवन के सब कुछ, सारे समय सब अर्थ सारे लगा करके जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के लिए लगा दिए। अंततः जब दारु विग्रह निर्माण किए, वो भी निर्माण के समय में घटना है कि जब असमध यज्ञ हुआ, आकाशवाणी हुआ, भगवान बोले ठीक है तुम मुझे बांकी मुहाण में समुद्र में जाओ, वहां ये दारु खंड को उठा करके लाओ, जो ये चतुर्धा मूर्ति रूप में जो दारु पहुंचे उनको उठा कर लेकर के आओ, ला करके उसमें विग्रह निर्माण करो और उसी विग्रह में आपके द्वारा प्रतिष्ठित होना चाहता मंदिर भी बनाओ। तो उन्होंने वो दारु को लेकर आए, विग्रह बनाए और फिर मंदिर बनाए, वही नील चराख के ऊपर, नील पर्वत के ऊपर समुद्र किनारे मंदिर बनाए और प्रतिष्ठा करने के लिए बोले ना इतने सारे भारी काम क्या, सीधा ब्रह्मा जी को बुला कर आता हूँ, ये यहाँ के पुरोहित को नहीं बुलाऊंगा, सीधा सीधा ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए दोनों पति पत्नी ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में गए, अपने आईडी कार्ड भेजे, ब्रह्मा जी थोड़ा बिजी थे तो इतने टाइम बीत गया थोड़ा ब्रह्मा जी के भेंट के लेकर आने में, तो वहां ब्रह्मलोक के टाइम और हमारे इस धरती लोक के टाइम का बहुत बढ़ गया, तो वहां तो कई हजार हजार युग बीत गया। बड़ी लंबी कथा है, वो ब्रह्मा जी साथ आए तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करना मिलता था, प्रवेश मंदिर मिट्टी के अंदर छिप गया था, और तत्कालीन जब कई हजारों युग के बाद में तभी जमाने में उत्कल प्रदेश के राजा थे गालमाधव, वो उनको अपने प्रत्न तत्वविद विभाग द्वारा खोज खनन करके उस मंदिर को प्राप्त किए और एक नारायण विग्रह प्रतिष्ठा करके नारायण भक्त को पूजा कर रहे थे। और जब इंद्रदिन महाराज, गुंडीचा महारानी, ब्रह्मा जी और अपने सब शासन लेकर आए, बोले हुआ जी आपके चंद्र आए, बोले अरे हमारा मंदिर, हमारा अपना मंदिर, ये अपना मंदिर को आपको घुसने देगा, आपके घर में कोई आएगा गेस्ट, मैंने बड़ा परिचित गेस्ट तो नहीं, अतिथि मतलब आप पहचानते भी नहीं उनको, हटात कभी आएगा, बोले हाँ मेरा घर आप क्या करते हैं, मुझे जाने दो मेरा घर, आप अगर कुछ थोड़ा अच्छा मोड में भी होंगे कभी अतिथि आए तो, बोले अतिथि नहीं अब तो पीटेंगे, ये बोलते मेरा घर है। तो ये इंद्रदिन महाराजा जो बोलते हैं मेरा मंदिर है, और कौन सिक्योरिटी लोग तो इसी के बड़ बंद कर दी, उन्होंने राजा को बुलाए और बड़े जुक्ति हुआ, बोले हाउ कैन यू से दैट इज योर टेंपल, इंद्रदिन महाराज बोले आप बनाए थे क्या, ना मैं नहीं बना था लेकिन मैं खुद के निकाला, बोले मैं बना था इसलिए मैं बोलता हूँ, अरे तुम बनाए थे क्या प्रूफ है, कैसे बोलते थे इतने पुराना है, तो कोई खाता खतियान नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, जो कल्पवट है आज भी श्री मंदिर के दक्षिण पार्श्व में, इस कल्पवट में जो काकभूषण जी थे वो काक रोहिणी कुंड में ऊपर बैठ करके ओ ये बोलने लगे, बोले हे गालमाधव, यही इंद्रदिन राजा है, हे गुंडीचा देवी, हे ब्रह्मा जी, इन्होंने मंदिर का निर्माण किया, मैं सत्य बोल, बोले तुम कौन से, तो कौवा है तुम किसी बात का, तो बोले कि ठीक है मैं मानता हूं तुम मेरे पे बात विश्वास नहीं करते हो, देखो तो तुरंत तुमने जंप किए रोहिणी कुंड में, रोहिणी कुंड में पानी में गिरे और सभी के देखते देखते चतुर्भुज नारायण मूर्ति प्रकट होकर के ऊपर, अरे तब तो नारायण भक्त थे और सब विश्वास करे, बोले तू इतने बड़े काम का सब विश्वास करे, तो उन्होंने बोला हाँ आई आई तो लगता है आपका ये, तो जो भी हुआ सब समर्पण किए, तो बोले जो जगन्नाथ विग्रह को साइड करके रख दिए थे वो पहचान नहीं पा रहे थे वो क्या है, तो इसी को फिर प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, बहुत डिटेल ब्रह्मा जी ने काम किए, जितने दिन का टाइम लगे को लगा करके विविध प्रकार से जाग यज्ञ अनुष्ठान सब करके, कई दिन का जो लास्ट दिन था दी इंस्टॉलेशन डे, जिस दिन नेत्र उन्मिलन हुआ, फास्ट आरती करेंगे, सी ब्रह्मा जी आरती कर रहे थे, मुख्य पुरोहित साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, वो आरती किए तो करोड़ों संख्या में जनता ओ दर्शन करने आए थे इतने बड़े उत्सव का। दूर दूरांत से अन्य अन्य देश से भी लोग आए थे, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे इंद्रदेव महाराज, जो दोबारा उनके प्रकट हुआ तो लोग और आश्चर्य हो गए, राजा जी कहीं चले गए थे, हम हिस्ट्री में पढ़े थे उनके नाम, फिर कैसे आए, क्या हो। तो विशेष भगवान की कृपा से बहुत भीड़ आया था और इतने जनता के बीच में स्वयं ब्रह्मा जी अनेक ब्रह्मपुत्र ऋषि महर्षियों के बीच में विशेष यज्ञ आदि करके प्रतिष्ठा करके चक्षु उन्मिलन करके और जब प्रथम आरती कर रहे थे लाखों करोड़ों की भीड़ के बीच में, तो जब आरती हुआ जय जयकार हुआ तो भगवान, तब उनका नाम ही नहीं हुआ था, नाम क्या किसी को पता नहीं था, तो विष्णु करके मानते थे, नीले माधव कोई बोलते थे, अब दारू ब्रह्म दारू से निकले भगवान। तो ये दारू शब्द का अर्थ है शराब मत समझिए आप लोग, इसे समझते हैं दारू शब्द का अर्थ है शुष्क काष्ठ संस्कृत भाषा में इसको। तो जगन्नाथ भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि आरती के उपरांत तो बोल पड़े भगवान और आनंद के मारे रुक नहीं सके, प्रकृष्ट रूपण आनंद होकर प्रमोदित होकर के बोलने लगे जगन्नाथ भगवान, बोले हे महाराज इंद्रदुम्न, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो कि आपका जीवन सर्वस्व लगा करके सब कुछ करके अपना सुख नहीं चाह मुझे प्रतिष्ठा तक किया, यद्यपि मेरा ही इच्छा से हुआ लेकिन आपको परम श्रेय जाता है, आपने प्रतिष्ठा किया, इसलिए आपके इस प्रकार कार्य के लिए मैं परम प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। और मैं जिस खुशी होता हूं तो मैं कुछ देना चाहता हूं, मैं वरद राज हूं, वर देने में राजा हूं, तो कुछ मेरे से आप वरदान ले लीजिए, कुछ मेरे से वर प्राप्त कीजिए, बारंबार प्रेरित किए जगन्नाथ भगवान ने खुश होकर। सारे पब्लिक भी सुन रहा है, ब्रह्मादि सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो भगवान की इतनी प्रसन्नता स्वयं भगवान व्यक्त करते हैं अपने सिमुख से और वरदान करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इंद्रदेव महाराज तो गदगद हो गए भगवान के बोलते हुए सुनकर, अभी तक ये लकड़ी के भगवान ये बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोले नहीं रंग अदर से हंसते हंसते बोल रहे हैं, हम तो बोल दोनों आंख रख रहे थे बोलते भी हैं। तो जब बोल रहे थे तो इंद्रदेव महाराज बोले कि हे प्रभु, जब आप प्रसन्न इतने प्रसन्न हो कि आप वरदान देने के लिए प्रेरित करते हैं और मुझे वरदान देने के लिए चाहते हैं, बोलते हैं साक्षात, फिर क्यों ना अब फिर मेरा और क्या मांगने के बाकी रह गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन के एकमात्र लक्ष्य था आपकी प्रसन्नता। देखिए जो सही भक्त होंगे उनका यही लक्ष्य होता है भगवत प्रसन्नता के लेकर, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करना चाह रहा था, आप प्रूव दैट आपने, यू आर सो प्लीज्ड, आप इतने प्रसन्न हो चुके हैं, इतने परम प्रसन्न हुए कि अब दारू रूप विग्रह में रह करके आप खुशी होकर के बात करने लगे और वरदान देने के लिए प्रेरणा देते हैं, आप इतने प्रसन्न है, बस आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, मेरे और जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मेरा सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं पूर्ण काम हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान में जैसे भक्त भी ऐसा है निकला इंद्रदेव महाराज, तो जगन्नाथ भगवान बोले अरे रे रे इंद्रदेव ना दिस इज वेरी नाइस, आपके मूड बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, आपने कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरा बदनाम होगा, मेरा मार्केटिंग खराब हो जाएगा। बोले क्यों? बोले आप अगर कुछ लोगे ही नहीं तो आगे चल करके मेरे पास कोई भक्त आएंगे नहीं कलयुग में, तो बोले क्यों? बोलेंगे ये देखो ये पूरा जिंदगी बर्बाद किया, उनके पीछे क्या मिला, उनको कुछ भी नहीं, तो उनके पास मत जाओ यार, ऐसे तो देवी देवता पूजा करते हैं, मेरे पास कोई आएंगे नहीं, मेरा मार्केट डाउन, तो फिर ना तो कुछ तो लीजिए ताकि दोस्तों लगे हाँ देते भी हैं कुछ, पहले नहीं दिए थे अंत में तो दिए, तो कुछ तो आशा रखें कोई आएंगे, तो इसलिए प्लीज कुछ मांगो कुछ मांगो। बारंबार प्रेरणा किए तो महाराज इंद्रदुम्न बोले कि प्रभु जब आप कुछ बाध्य करते मांगने के तो मेरे इच्छा के अनुसार मांगो, हाँ आई वॉन्ट टू फुलफिल योर डिजायर, आप किसे अवसर मांगो। तो महाराज इंद्र दुम्न ने मांगना शुरू किए। सबसे पहले बोले, सबसे पहली मांग था कि हे प्रभु, मैं पूरा जीवन आपके लिए लगाया, आपको प्रतिष्ठा, तो आज मैं इतने प्रसन्न हूं कि आपको मैंने रत्न सिंहासन पर, रत्न वेदी पर प्रतिष्ठित कर डाला। आज आपके प्रथम आरती ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, आपके इंस्टॉलेशन हुआ, आपको लख्खे लख्खे जनता दर्शन करते मैं भी देखता हूं, और आप मेरा जो कार्य था पूरा हुआ, और आप इतने प्रसन्न है कि आप वरदान देने के लिए बोल रहे हैं, आप इतने खुश हैं, तो फिर भी आप चाहते हैं मैं कुछ मांगू। तो हे प्रभु, मेरा मन में एक ही बात आता है कि अभी तक यद्यपि मैं विवाहित हूं, मेरे साथ में धर्म पत्नी बिल्कुल ही धर्म कार्य मेरा साथ, मेरे साथ पूरा दे रही है, पूरा मेरे साथ हाथ हाथ बटा रही है, पूरा मेरा साथ दे रही है, मेरे साथ में खड़ी है, अभी भी मेरा अभी तक अपत्यहीन, कोई मेरे संतान नहीं है। तो मैं आपको ये प्रार्थना करता हूं कि मैं मृत्यु तक ऐसे निसंतान रहूं। अरे, जब बोले कि अभी तक संतान नहीं, सब बोलेगा एक पुत्र मांगेगा, कुछ मांगेगा, लेकिन बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निवंशक, मैं वंशहीन रहूं, मेरा वंश में कोई ना रहे। तो सबसे पहले तो गुंडीचा महारानी आश्चर्य हो गए, बोले क्या ये वर मांग रहा है ना, अभिशाप मांग रहा है। सारे पब्लिक भी आश्चर्य हो गए, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हो गए, जगन्नाथ भगवान ही बोली, इंद्रदिम्न ये क्या मांग रहे तुमने? बोले प्रभु यही तुम्हारी इच्छा। बोले क्या? सभी आश्चर्य, राजा का मन में क्या है? यद्यपि अंतर्जामी जगन्नाथ सब जानते थे, लेकिन पूछे, बोले महाराज इंद्रदिम्न क्या रहस्य है, ऐसा क्यों मांगा? तो भगवान ने पूछे, तब महाराज इंद्रदिम्न बता, बोले हे प्रभु, मैं आपको कितने परिश्रम उठा करके, कितनी तकलीफ उठा करके मैं आपको स्थापना किया, आज रत्न वेदी पर, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपके प्रथम आरती, आपके उत्सव मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया, ये मुझे पता है। तो अंततः आपको प्रसन्न कर पाया, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे साक्षात भगवान प्रसन्न मुद्रा में यहां प्रकट हुए हैं, आप किसके प्राइवेट ठाकुर बन करके रहे। अब मैं तो चला जाऊंगा काल की गल में, तो मेरे कोई संतान अगर होंगे आगे चल करके, वो कहेंगे ये दिस इज आवर फादर्स प्रॉपर्टी, वो हमारे पिताजी के हैं, पितृ की संपत्ति हैं, वो अपना ठाकुर, अपने घर के ठाकुर मानेंगे, और किसी को आने भी देंगे नहीं भी देंगे, क्या पता क्या करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं। अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप तो समस्त जगत के नाथ बनकर रहो, ना कि हमारे नाथ बनकर। यू आर पब्लिक फिगर, नॉट प्राइवेट फिगर। तो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, अभी नामकरण भी किए, नामकरण स्वयं इंद्रदिम्न महाराज ने किए कि मैं चाहता हूं आप स्वयं जगन्नाथ बने। तो जगन्नाथ नाम उसी दिन उनके जन्मदिन के दिन इंद्रदिम्न महाराज ने दे दिया, जगन्नाथ नाम उनका। तो पहले जगन्नाथ थे नहीं, ये जगन्नाथ नाम तो महाराज इंद्रदिम्न ने दिया, दारू ब्रह्मा अरुणा नाम जो करते थे। तो फिर बाकी और भी कुछ वरदान मांगे, मैं आपको खिलाना चाहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब किए। लेकिन ये सारे वरदान देने के बाद जगन्नाथ भगवान बोले, ठीक है, मैं आपके जो इच्छा सब मैंने पूरा कर दिया, लेकिन जब मैं आपको वरदान दिया, कुछ तो किसी को दान देते हैं तो दान के साथ थोड़ा दक्षिणा भी देना पड़ता है, मैं कुछ दक्षिणा भी दूंगा मेरे तरफ से। ओ, ये इट इज नॉट अप टू यू, इट्स अप टू मी व्हाट आई कैन गिव यू दक्षिणा। हाँ, बख्शिश में मैं दूंगा, हाँ दीजिए। तो जगन्नाथ भगवान बोले, बोले देखो, मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे गुंडीचा माता दुख कर रो रही है, बाकी सारे जनता भी ऐसे आश्चर्यचकित देख रहे हैं क्योंकि अपनी संतान हो। तो भगवान ने एड्रेस किए अभी गुंडीचा माता को, बोले हे देवी गुंडीचे, चिंता मत करो, हे माँ गुंडीचा, यद्यपि आपके पत्नी इतनी उदार है, इतनी उदार है, पूरे जगत के लिए आपने आपको निछावर कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसे वरिष्ठ श्रेष्ठ भक्त को आप अर्धांगिनी हो, आपकी इच्छा कैसे अपूर्ण रह जाएगा? गुंडीचा माँ मन में क्या अपूर्ण होगा, पति ही मना करते हैं, कोई बेचारे संतान नहीं होगा और क्या पूरा बोलो।
अंतर्यामी भगवान जगन्नाथ बोले, हे गुंडीचा देवी चिंता मत करो, आपके जगदेव अभी तक कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं, आपके रेडीमेड संतान प्राप्त होंगे। अभी आप संतान बनेगा, 9-10 महीना गर्भ धारण करेंगे, आप चाहते हैं कि बेटा बन जाओ कि क्या पता बेटी हो जाए, और वो काला होगा कि गोरी होगा, कि मूर्ख होगा कि पंडित होगा, कि झगड़ा होगा, क्या स्वभाव होगा, क्या करेगा पता नहीं। कई लोगों का पुत्र हुआ और उसी के चलते घर छोड़ के भागे दुखी होकर के, तो ऐसा आगे चलकर गड़बड़ हो, पढ़े लिखने के बदनाम करेगा, सुनाम करेगा, क्या करेगा। तो इसलिए ये सब कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, बनी बनाए रेडीमेड आप पुत्र कन्या प्राप्त हो जाएंगे। बोले पुत्र भी कन्या भी ना, हाँ बनी बनाए मिलेंगे, एक नहीं तीन तीन मिलेंगे, तीन तीन मतलब ना दो बेटा एक बेटी, चलेगा ना काम? हाँ बहुत अच्छा, दो बेटा एक बेटी बहुत है, लेकिन कहां से आएंगे रेडीमेड, कौन बना के देगा? अरे बनी बने आपके लिए रेडी है, एक बार आपको कोई जन्म कष्ट गर्भ धारण करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, पढ़ाना लगेगा सब, एक बार स्पेशली ग्रेजुएटेड सर्वज्ञ शिरोमणि सर्व समर्थ, हाँ, और उनके समान कोई हो ही नहीं सकता, उनके समान कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा ही बेटा बेटी आपको मिले ना, कौन है बताओ तो सही। सबके आश्चर्य को दूर करते हुए भगवान जगन्नाथ बोल पड़े, बोले हे देवी गुंडीचे, आप हमारा माँ हो, आप दोनों के मैं, मेरे भाई मेरे अग्रज बलदेव और हमारे प्यारे बहन सुभद्रा, हम आपके दो पुत्र एक पुत्री के रूप में, हम स्वयं अपने आप अपने ओर से राजी खुशी से आपके बेटा बेटी बनना चाहते, हम तीनों भाई बहन आपको बनना चाहते। तो भगवान ने अपनी तरफ से देखिए कितने खुश है भगवान, जान बूझ करके उनके बेटा बेटी बन गए। कोई वर मांगता है मेरा पुत्र बन जाए, अरे ये वर मांगना तो वो भगवान स्वयं वर देना कि चलो जबरदस्ती उनके बेटा बेटी बने, प्लीज एक्सेप्ट अस, प्लीज एक्सेप्ट अस एज योर सन एंड डॉटर। और एक समय के लिए तो खुशी हो गए देवी गुंडीचा ने, बोले हाँ बहुत अच्छा है आप। फिर थोड़ा मुंह सुखाने गए, बोले माँ क्या हो गया, दुखी क्यों नहीं है, दुखी क्यों हो रहा है ना? हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप तो बेटे बने बनी बनाई बेटा तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है ना, आपने बेटा होता तो फिर ना क्या होता, आपने बेटा होने से कौन सा मैं, मेरे से क्या कमी है, आपने बेटा होता तो क्या होता, मैं क्या नहीं कर पाता ना। नहीं ऐसा बात नहीं, आपने बेटा होता तो कम से कम हम मर जाने के बाद तो हमारा श्राद्ध करता, तर्पण करता, पिंडदान तो करता, ब्राह्मण भोजन तो कराता, लेकिन आप तो बड़े ठाकुर मंदिर में रहोगे, क्या हम मरे गए क्या पता। बोले माँ ऐसा बात नहीं, मैं वचन देता हूं जब तक किस धरती पर चंद्र और सूर्य आतजात रहेंगे, चंद्रमा सूरज रहेंगे, तब तक मैं आप और पिताजी के जब अप्रकट तिथि होगा उस तिथि में मैं श्राद्ध करूंगा, हम भाई बहन सब मिलकर के परिवार का मिलकर के आपका श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे और ब्राह्मण भोज कराएंगे। आपके कोई बेटा बेटी कब तक करता, हम तो करेंगे जब तक चंद्र सूर्य रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। अब खुश ना, हाँ तो आप बोलते हैं तो करोगे ना, हम करेंगे अवश्य करेंगे। आपको पता है जगन्नाथ जी के अनेक वेश में से एक वेश आज भी आप देखेंगे श्राद्ध वेश, बिल्कुल सादा धोती चादर बांध कर, पगड़ी बांध कर, कुछ बटू पहन करके हाथ में, और बिल्कुल पिंडदान करते हैं दोनों भाई मिलकर के, ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं, हाँ, पिता माता के साथ धक्षम करते हैं, तो अभी करते हैं, भगवान वचन दिए तो करते हैं, अभी तक कितने युग बीत गया लेकिन करते हैं। तो अभी तो खुश ना, हाँ ठीक है, लेकिन फिर ना, फिर क्या है, फिर क्या मन में रह जाए, कच्चा पच्चा मत बताओ, साफ साफ बताओ ना, अपना बेटा होता तो अपना तो अपना होता है ना, क्या है, मैं फिर नहीं क्या कर पाऊंगा, अपना बेटा होता है, मैंने मेरे के क्या कमी है ना, नहीं अपना बेटा होता तो कितने पढ़े लिखे बड़े हो जाए, भले देश विदेश में चले जाए, कभी ना कभी तो घर आएगा, गांव में आएगा, अपने कुटिया में अपने माँ के पास तो आके बैठेगा, थोड़ा सामने से थोड़ा अच्छा बात कुछ पूछेगा, और जो मैं बना करके दूंगी रुखा सुखा जो भी, जो मैं जानता हूं उनके क्या पसंद है, वो पसंद के हिसाब से मैं कुछ बना कर दूंगी, तो उसको प्रेम से खाएगा तो कितने मजे प्रसन्न होगा मेरे बात पर। और आप तो बड़े ठाकुर, आप थोड़ी ना हो गए अपना घर में, आप तो अपना श्री मंदिर है, और सचमुच गुंडीचे माता के मन में एक कष्ट थी, वो बहुत पहले से वो कष्ट थी, और भगवान तो अंतर्जाम ही वो जानते हैं क्या कष्ट थी। क्यों, जब दारू का निर्माण होता था, जब अनंत महाराणा आ करके गुंडीचा देवी के भवन में, तो महादेवी महावेदी के भवन में जब दारू निर्माण होता, तब अनंत महाराणा ने कंडीशन रख दी, क्योंकि कितने काठ मिस्त्री कारपेंटर आए थे, सब वापस जाते थे, कोई खर्च नहीं डाल पाते थे। तब वो जो महाराणा आए वृद्ध होकर के बोले मैं करूंगा, उनके पास कोई औजार ही नहीं था, एक हामर और एक निहान छेनी था, बोले मैं बनाऊंगा। अरे तुम क्या बनाओगे, लोग हंसने लगे, बोले नहीं मैं बनाऊंगा। ठीक है बनाओ, ना मेरे कंडीशन है। क्या कंडीशन, ना मुझे 3 हफ्ता चाहिए, 21 डेज, रूम बंद करना, आप ताला लगाओ, मैं अंदर से बंद करूंगा, सील करो दरवाजा, कोई अंदर नहीं जा सकते, मैं अकेला बनाऊंगा। अरे खाओगे पियोगे, नहीं कुछ नहीं खाना पीना, विग्रह निर्माण हो जाएगा, फिर जाकर के भोजन पानी होगा, मैं कंटिन्यूअस 21 डेज टाइम चाहिए, कोई एंट्री नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मैं अंदर अकेला बनाऊंगा। राजा ने अब क्या करे, बिकड़ होकर एग्रीमेंट साइन कर दिया, चलो भाई कुछ तो बने, कोई नहीं अभी आप बना नहीं पा रहे, तो राजी हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया। तो मंदिर में घुसे, वो तो उन्हीं के ही रूम था, गुंडीचा देवी की, उनके रूम में दारू था, कष्ट था, तो जा करके वो बूढ़ा मिस्त्री ने अंदर गए, वो बाहर से चाबी लक कर दिया गया, सील कर दिया गया रूम, लक डाउन में, जैसे सील शट डाउन में करते हैं, इसे कर दिया गया। अब लेकिन माँ गुंडीचा जब मातृ हृदय तो बहुत थोड़ा कोमल होता ना, कोमल मातृ हृदय डेली जा करके ये चारों तरफ अपना कमरा तो घूम रही थी जा करके, अरे ये बूढ़ा आदमी काल से खाया पिया नहीं है, क्या काम कर रहा है, जाकर कान लगाकर सुनता है, ठक 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 निर्माण के शब्द आता है, तो उनको लगता है कुछ तो काम चल रहा है, कुछ तो काम हो रहा है। तो प्रतिदिन जाती थी और घर को परिक्रमा करती थी और शब्द को सुनती थी, ऐसे धीरे धीरे 10 दिन हुआ, थोड़ा साउंड कम हुआ, 11 दिन में और वॉल्यूम डाउन हो गया, 12 दिन हुआ तो वॉल्यूम खत्म, शब्द सुनाई ना पड़ा। तो देवी गुंडीचा बड़ी दुखित होकर रोने लगी, बोली बूढ़ा मर गया, जरूर मर गया होगा, अरे हम लोग एक दिन निर्जला फास्टिंग करते हैं, हाल खराब होता है, हर 10-12 दिन बिना खाए पिए इसी गर्मी के समय कैसे, क्योंकि ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास में कैसे हो सकता। तो जा करके पति से इंद्रदिन महाराज से बोली, आप विग्रह क्या बनाओगे, प्राण प्रतिष्ठा करोगे, प्राणघाती आपके नाम में मर्डर केस होगा। और मर गया बूढ़ा, लगता है निश्चित मर गया। अरे क्या बात कर रहे हो नारे, मैं प्रतिदिन जाती हूँ परिक्रमा करने, सुनती हूँ, अब तो बिल्कुल खत्म, बिल्कुल नहीं आता। तो राजा को बड़ा डर लगा और धूपते चर को बजाकर जा पता कर, सब पता कर, बोलो महाराज कोई साउंड नहीं, कुछ जीवित रहने का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा। और रानी तो एक बार रोने लगी, हाथी पड़ने लगी, आप तो क्या हो गया, आप देखने निष्ठुर है इसे। तो राजा ने फिर रानी की हालत देख करके ऑर्डर दे दिया, बोले खोल के देखा जाए क्या है। तो चाबी तोड़ करके, सील खोल करके, चाबी खोल कर, जो दरवाजा खोल करके अंदर गए, जाके देखे कोई नहीं है, ये महाराणा गायब, अंतर्धान हो चुके हैं, कोई नहीं है आदमी, और से ये तीनों विग्रह, चारों विग्रह ऐसे हाफ मेड, कंप्लीट नहीं, इस अवस्था में है, हाथ आधा आधा बना, कंप्लीट नहीं, पैर तो है ही नहीं, बाकी इस प्रकार जो रूप आप दर्शन कर रहे हैं अभी अल्टर में जगन्नाथ महादेव सुधा, वही रूप देखने, कलर नहीं था, ऐसे देखे, देख करके राजा को बड़ा दुखी लगने लगा, अरे तो हाफ मेड है, कंप्लीट नहीं हुआ, हम खोल दिए टाइम से पहले, इसी वजह से जितने भी और कर्मचारी थे सभी लोग दुखी हुए और सभी ने गाली दिए रानी माँ गुंडीचा देवी को, सबने डांटे गलती, बोले आपके वजह से, राजा बोले आपके वजह से, आपने रो रहा कर जबरदस्ती किया तो खोल दिया, अब कहाँ चले गए मिस्त्री जी, अब मिलेंगे नहीं, कंप्लीट कौन होगा, और सचमुच तो अंतर्दान हो चुके थे, मिले नहीं, अब सभी ने गाली दे रहे थे। गुंडीचा माँ के मन में भी अंतर से बड़ा दुखी हुआ, क्या ना मैंने गड़बड़ी की, मैं विश्वास नहीं किया, मैं खुलवा दिया दरवाजा, ये तो इनकम्प्लीट बिगर थे। अब जानते ना, जैसे कभी कभी एक पृष्ट बच्चा संतान जब गर्भ से डिलीवरी होता है, डिलीवरी पीरियड, वो गर्भ में रहना पड़ता है उसको एटलीस्ट 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स होता है, 10वां महीना में वो संतान बाहर आता है, तो ठीक ठाक मैच्योर। लेकिन जब कभी कभी डिलीवरी 8 महीना में 7 महीने में हो जाता है, तो उसको बोलते प्री मैच्योर डिलीवरी, इमैच्योर डिलीवरी। तो माँ गुंडीचा को ऐसे मन में कष्ट हुआ कि ये जो ठाकुर को मैंने प्री डिलीवरी पीरियड में डिलीवर कर दिया, मैंने खोल दिया दरवाजा, ये प्री मैच्योर्ड है, अभी उनका अंग अभी पुष्ट नहीं हुआ है, अभी तक पक्के नहीं बने, अब तक मैं खुलवा दिया, हाथ पर ठीक से बना नहीं। इसलिए मन में बड़ा दुख था कि 9 दिन और कमी रह गया, 9 दिन के बाद में खुलता गर्भगृह में उनको, और 9 दिन बाकी था, मैं प्री मैच्योर में पहले से 9 दिन पहले में खोल दिया। कम नहीं, इनका मन में बड़ा दुख रह गया कि मेरे कारण भगवान इस प्रकार रह गए, कंप्लीट नहीं हुआ। यद्यपि बाद में नारद जी आए उनको समझा, लेकिन फिर भी उनका मन में दुख। तो इस बात को यद्यपि किसी को बता नहीं रहे थे, लेकिन मन में उनका बड़ा दुख था। ये बात को जगन्नाथ भगवान अंतर्यामी वो समझ रहे थे। तो बोले, हे माँ, आप चिंता मत करो, ये भी मैं वरदान देता हूं आपको कि मैं हर साल आपके पास आऊंगा, अकेला नहीं, हम चारों भाई बहन अपने अवधि के साथ आपके पास आएंगे और एक आपके पास रहेंगे। बिल्कुल जो 9 दिन का शॉर्टेज था ना, वो 9 दिन का यात्रा पूरा करेंगे। वही 9 डेज जो 12 दिन में खोल दिया और 9 दिन जरूरत था 21 दिन होने के लिए, वो 9 दिन अपने यात्रा में और समुद्र के रहकर आपके पास बिताएंगे और 9 दिन यात्रा पूरा हो जाएगा। और मेरा तो नाना और प्रकार के अलग अलग प्रकार की इच्छाएं से पूर्ण होगा, लेकिन आपकी जो इच्छा है तो आपके साथ में रहे, कोई आपकी बात सुने, आपको बनाकर दे, आपके हिसाब से सुखाए, तो इसी प्रकार सारे इच्छा मैं तुम्हारा पूर्ण करूंगा और आपके पास 9 दिन रह करके जो असली कमी महसूस करता है कि मेरा लाला इमैच्योर है, कम रहेगा, और इमैच्योर मैच्योरिटी को पूरा करूंगा ये 9 दिन रह करके। तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ कई लोगों को इसे उनके साथ अग्रीमेंट करके वरदान दे चुके हैं। तो इसी वरदान के नाते महाराज महारानी गुंडीचा और इंद्रदन महाराज के घर पर जगन्नाथ जी को हर साल आना होता। तो गुंडीचा देवी के तो घर में बताया, गुंडीचा मंदिर इंद्रदन सरोवर इंद्रदन महाराज वहीं रहते थे। तो साल में एक बार उन्होंने इंद्रदन महाराज को बोले, ये मेरा जन्मदिन जब होता है आज के दिन, मेरे जन्मदिन के बाद मैंने 15 दिन बीमार रहूंगा, उसके बाद आषाढ़ प्रतिपदा को मेरा तबियत ठीक होगा, मैं फिट होकर के आऊंगा। फिटनेस के बाद में अंगराग देह स्वीकार करने के बाद मैं द्वितीय आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पुष्य नक्षत्र में मैंने पवित्र गाड़ी में चढ़ करके, रथ में चढ़ करके घोष यात्रा होकर के और आपके वहां मैं जन्म वेदी पर जाऊंगा, महावेदी यात्रा गुंडीचा महारानी के घर में जाऊंगा। इसलिए गुंडीचा यात्रा, महावेदी यात्रा ये सब कहा गया कि मैं गुंडीचा मंदिर पर जाऊंगा और वहां पे रुककर फिर 9 दिन यात्रा कम्प्लीट होने 9वां दिन आऊंगा। जो सिमेंद्र से एब्सेंट 9-10 दिन रहते हैं, इसमें 9 दिन तो ये वचन भगवान ने मां गुंडीचा को दिए थे अपने बेटे की संतान के रूप में। तो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ने आज भी अपने भाई बहन को लेकर के गाड़ी में अपने रथ में पहुंचते हैं गुंडीचा मंदिर अपने प्रमिज रक्षा करने के लिए। यद्यपि ये माँ जसोदा के लिए वरदान जाते हैं और 9 दिन का था, वही 9 दिन की यात्रा में जाते हैं, 7 दिन रुकते हैं, 1 दिन जाना 1 दिन आना, 9 दिन का यात्रा करते हैं। ये भी एक कारण है गुंडीचा मंदिर जाने का, गुंडीचा रथ यात्रा बोलते हैं उसको। दूसरा दिन जो होगा 9 दिन के बाद बाहुड़ा होगा, ये गुंडीचा है। और इस उत्सव में जितने भी और बड़े बड़े सब समझदार व्यक्ति हैं, सभी जानते हैं कि ये गुंडीचा महारानी के वहां भगवान पधारते हैं साल में एक बार, उनसे देखेंगे सब्र कर जाते हैं। उसका पीछे और भी एक रहस्य है भाव, ये बृहद भागवतामृत के अंतर्गत है। जब नारद जी ने भगवान के शुद्ध भक्त के अन्वेषण में ढूंढते रहते, ढूंढते ढूंढते पहुंचे द्वारका, पांडव लोग ने द्वारका भेजे, द्वारका में जब पहुंचे तो द्वारका में सुमंत जो सभागृह है, सभागृह में समस्त यादव उग्रसेन महाराज के संरक्षण में से बैठे थे। नारद जी पहुंचे और कृष्ण के शुद्ध भक्त के उन्होंने तो पहले से उनको रिकमेंड किए थे। पांडव लोग ने उद्धव के नाम बताए थे, जदुवंशी बोले जदुवंश उद्धव सबसे बड़ा। तो उद्धव को ढूंढने के लिए जाकर नारद जी पहुंचते हैं और सभा भवन में सुकर्मा सभा भवन में सबको दर्शन करके सभी अभिवादन किए नारद जी को। तो वहां से उन्होंने बोले मैं ढूंढने के लिए, अरे आप ढूंढना चाहते हैं उद्धव जी श्रेष्ठ भक्त, तो उद्धव जी के नाम बोले मैं उन्हीं को ढूंढना चाहता हूं। तो उनको भेजे तो नारद जी उद्धव के लिए अभी आएंगे आएंगे, उद्धव नहीं आ रहे, टाइम हो गया, भगवान भी नहीं आ रहे, बलराम जी भी नहीं आ रहे, सभी अपेक्षा करके बैठे। तो फिर सब बोले कि नारद जी ऐसा करो, आप जाओ पता लगाना, आप तो मित्र हैं, उनको बोलना कि सभी अभी तक नहीं आ रहा, हम सब आप तभी से वेट करें, जल्दी आए, सभा भवन शुरू होगा, आप हमारे सब वेट करके बैठे हैं आप लोग के लिए। तो नारद जी भगवान के निजी आवास की ओर चले, उनका रेसिडेंस क्वार्टर की ओर चल करके देखते हैं, यहाँ एक अद्भुत घटना हुआ है। यद्यपि लेट हो चुका, अभी 10 बजने वाला है, लेकिन लेकिन भगवान कृष्ण अभी तक शयन कक्ष में है, लेटे हुए हैं, अभी उठे ही नहीं। और सारे उनके अष्टपाट रानी माँ देवकी, वसुदेव, भाई बलराम और उद्धव जी सब चिंतित, क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रहे। रुक्मिणी आदि वो लोग कितने आके बोलते हम क्या करें, सब दुखी हैं, रो रहे हैं सब। इसलिए से इतने बलराम में अपना बलराम तो समझ गए थे, बोले मैं समझ रहा हूँ क्या घटना है, क्या हो गया ना, कल रात को बड़े याद कर रहे थे, आधी रात से यही से मूड है, उठ नहीं रहे, कम्बल ओढ़ करके पड़े हैं। इस अवस्था से नारद जी आकर पहुंचते हैं और उद्धव जी की ढूंढते हैं। तो उद्धव जी के सामने कह करके जो बड़े मर्मंतुद वर्णन होता है, हम डिटेल वर्णन नहीं करते हैं। तो इसमें इस वर्णन में कहा गया कि अंततः सब देख करके समझे कैसे भगवान इसी दशा पर है, समाधि दशा मूर्छित दशा पर हैं, कैसे उनको लाया जाए। तो बलराम जी तो जानते थे, बाकी सबको एक करके बलराम जी उनके घर के अंदर के बलराम जी थे, उद्धव जी थे और नारद जी तो पहुंच गए थे और देवकी वसुदेव और कुछ सीनियर मेहमत कुछ थे। तो सभी ने उद्धव और बलराम से मिल करके नारद जी से पहुंचे, रिक्वेस्ट को, नारद जी आप एक्सपर्ट सिंगर है, आप भगवान के लीला के बारे में सब जानते हैं, आप इस वीणा बजा करके भगवान के लीला गान कीजिए। आज की जो लीला है, जो ब्रज भाव में ठाकुर जी सरोवर हैं, उस ब्रज के संगीत आप गाइए तो भगवान उठ जाएंगे। नारद जी बोले हाँ उठेंगे तो सही, मैं ब्रज का गान करूंगा, उठेंगे तो सही, लेकिन उठ करके यहाँ टिकेंगे नहीं है तो। हाँ बोले आप अगर मैं गाऊंगा तो फिर रथ रेडी करके रखो, दारू को बोलो बिल्कुल रेडी रहे, क्यों ठाकुर जी उठेंगे तो सीधा रथ में दौड़ेंगे निरंतर नंदी घोष में, अपने रथ में जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, रथ में बैठ के व्रत चले जाएंगे। तो रोहिणी माता जब एक कथा कह रही थी तो सभी बोले कि कोई बात नहीं, बोले ना नहीं 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 नहीं, अगर वो ब्रज में चले जाएंगे गड़बड़ क्या ना, फिर नहीं आएंगे वापस, ये तो गड़बड़ है, वापस नहीं आएंगे ना, नहीं उनको फिर आप वापस नहीं पा सकते, नहीं नहीं तो फिर डेंजर है। लेकिन क्या होगा, भगवान मूर्छित तो अवस्था 10 बज गया, उठे ही नहीं तो उनको तो बोला जाएगा। तो बोले कि ठीक है ब्रज में जाएंगे, बोले जाके आ जाएंगे, लोग जाके आ नहीं सकते, लेकिन ब्रज जाना ही पड़ेगा, जब वो ब्रज नहीं जाएंगे वो अभी उठेंगे नहीं इस दशा से, तो बोले ठीक है फिर गया जाए, उनको जगा जाए पहले। उठा जाने के बाद किए तो फिर एक बोले, नारद जी बोले देखो उद्धव जी, आप तो सदा भगवान के प्रिय मित्र हो, मंत्री हो, आपको हमेशा उन्होंने मथुरा से भेजे थे संदेश भाव का मैसेंजर बना करके, तो आप अभी जाओ, पहले से हमें गीत गाने से पहले आप ब्रज में चले जाओ, जाकर उनको बताना कि कृष्ण आएंगे, क्योंकि कृष्ण की इस दशा में देख करके उनका और मर्मंत दशना हो जाए, दुखी हो जाए, पहले बताओ तो फिर भगवान जाएंगे तो नॉर्मल कंडीशन देखे वापस। तो जब उद्धव जी को रिक्वेस्ट की, उद्धव जी बोले अरे नारद, आपको पता नहीं है कि मैं पहले भी गया था मथुरा से, मुझे भेजे थे मेरे प्रभु कृष्ण ने, मैं जा करके उनकी जो दशा देखा गोपियों के और बाकियों के, इतने मैंने दुखी हुआ था, महीनों दिन रो रो करके आंसू बिछा करके, और उनको वचन दे करके आया था कि हे गोपिकाएं, अवश्य मैं जा करके अभी कृष्ण को बाध्य करके भेज दूंगा, हुआ आएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अभी दूसरा युग बीत चुका है कि भगवान अब तक गए नहीं, तो मैं किस मुंह से जाऊंगा, कौन मुझे विश्वास करेगा, दूसरा दिखाता करते हैं, किसी मैंने मेरे जान से मतलब नहीं, हाँ तो कौन जाएगा और इसे फिर। तो उद्धव जी नहीं गए तो फिर बलराम जी को बोले वो आप जाओ, बलराम जी भी कहे कि मरे जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो अवश्य ही जाता, लेकिन सेम फीलिंग आपका ही है। तो बलराम जी बोले मैं भी ये कृष्ण जाएगा कर नहीं जा रहा था, ब्रजवासियों की दशा को सोच करके मैं एक बार गया और जाकर के 2 महीना ब्रज में रुका, बड़े मुश्किल से सबको समझाया, जसमती माँ के चरण पकड़ करके नंद बाबा के सामने शपथ कर करके बोला कि मैया पापा, मैं जाते ही कृष्ण को, अब जानते हैं कृष्ण पर बात को टालता नहीं, जाते ही कृष्ण को अवश्य भिजवा दूंगा, अब चिंता मत करो, लेकिन इतना दिन हो गया ना कृष्ण जाता है ना नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा, किस मुंह से जाकर दिखाऊंगा, मेरे बात पर कौन मानेंगे, बलराम जी नहीं जा रहे, सब नारद जी तो गाएंगे कोई गाने वाला नहीं, तो ही चिंता पड़े थे, फिर क्या किया जाए, सब चिंता पड़े क्या, व्हाट यू कैन डू। इस अवसर में उनके प्यारी बहन सुभद्रा घर के अंदर प्रवेश की, क्या हुआ भैया क्या नहीं, सही से घटना कोई एक ब्रज में जाकर खबर दे तब तेरे भैया को गीत गा उठाएंगे, वो जाएंगे ब्रज तब जाकर। तो श्रीमती जमुना जी की याद करके श्री सुभद्रा जी बोले कि भैया चिंता मत करो, मैं नारी हूं, स्त्री जाति की हूं, मैं जाऊंगी ब्रज को और जा करके मैया जसोदा की गोद में बैठ जाऊंगी और आंचल से उनके आंख से बहती हुई आंसू को पोंछ दूंगी, गोद में बैठ करके हाथ पकड़ कर उनको समझाने के प्रयास करूंगी कि मैया आपके बेटा कृष्ण अभी आ ही रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, हम दोनों तो साथ में निकले थे, मैं और कृष्णा हम मद्वारा के साथ में निकले थे, लेकिन वो रास्ते में हजारों हजारों लोग उनको बरमाला देते हैं, उनको पैर छूना के लिए बैठे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया, वो पीछे आ ही रहे हैं तो आ ही रहे हैं। तो इस प्रकार मुझे जाने दीजिए, अब नारद जी वृंदावन के ब्रज के गीत गाएं, मैं जाकर उनको बता दूं, तो फिर कृष्ण ब्रज में जाएंगे, जाकर मिलकर आसान ठीक सब बोले हम ओके ओके। जब सुभद्रा माता जाने के लिए तैयार हो गए ब्रज में, उनके गाड़ी तैयार होने लगा हजरत देव दलानदात, तब बड़देव को फीलिंग नहीं, थोड़ा खराब लगा, बोले देखो हम दो दो भाई के एक ही बहन है और अभी हम उनको छोड़ेंगे स्थिति में, तो छोड़ना नहीं चाहते थे मैच्योर ग्रोन अप गर्ल बहन को अकेली इतने दूर गाड़ी में छोड़ना नहीं चाहते थे। बलराम बोले कोई बात नहीं भद्रा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा लेकिन मैं ब्रज में अंदर नहीं जाऊंगा, आप जाकर बताना मैं आपके साथ जाऊंगा, एकला ईश्वर कांड गो एलोन। तो बलदेव जी का रथ भी तैयार हुआ, तो बलदेव जी सबसे आगे निकले, सुभद्रा जी पीछे पीछे, उनके सुभद्राओं के पीछे पीछे, बोले मैं आगे जाता हूँ पीछे बस तक चलो। तो इस प्रकार बलदेव जी का रथ ताराध्वज रथ तैयार हुआ, उसमें बलदेव जी निकले, उसके पीछे देवर दलन रथ में सुभद्रा जी, और उसके पीछे श्री नंदीघोष रथम श्री जगन्नाथ स्वयं आंचल कोच करके ये सब करके, तो जगन्नाथ भगवान जब किए तो भगवान हठात नींद से उठे, हे राधे व्रज देवी के चलते ऐसी ब्रज की याद करके उठे, और तुरंत उनका गाड़ी रेडी था जाने के लिए, रथ में चले तो दारुक रेडी था, तो उद्धव और नारद जी के साथ में बिल्कुल ब्रज भाव से भावित होकर के पागल की तरह पढ़ते उठते माताल, बिल्कुल इतने मूड उनका राधा भाव से बिल्कुल इतने भावित हो चुके थे, सब कुछ भूल करके पागल की तरह झूलते झूलते हिलते हिलते पंडित विजय के रथ में बैठे और रथ में रथ चला। और इस प्रकार ये रथ यात्रा, और वही परंपरा के अनुसार आज भी जब तीनों रथ तैयार होता है, तीनों रथ में तीनों ठाकुर और भाई बहन बैठते हैं, श्री बलदेव जी के रथ है ताराध्वज रथ जो 22 हाथ के रथ है, श्री सुभद्रा जी के रथ है देवदलन रथ जो 21 हाथ की रथ है, और श्री जगन्नाथ जी की श्री नंदी घोष रथ है सर्वश्रेष्ठ 23 हाथ की रथ है। सबका जगन्नाथ जी के रथ के चक्का है 16, बलदेव जी की है 14, सुभद्रा जी के 12। ये कोई हमारे 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर वाला नहीं है, 16 व्हीलर, 14 व्हीलर, 12 व्हीलर गाड़ी है उनके, तो बैठ करके सारथी लेकर जब निकले। आज भी वही परंपरा है, बलदेव जी प्रथम जाते हैं, आगे आगे बहन पीछे उनका जाएगा, और पीछे जगन्नाथ जी कृष्ण पीछे जाते हैं, वृंदावन की ओर जाते हैं बिल्कुल ब्रज भाव में। आगे चले जाएंगे बलराम जाकर के ब्रज की बड़र में खड़े होकर ब्रज की दशा देखेंगे, देखकर इतने दुखी हो जाए, बोले ओ हो इतने अद्भुत विरह दशा, इंटेंस सेपरेशन उनको देख करके, वो देखे क्या वो जान में जीवित है या मर गए, ऐसे दोनों भाव के मिलन दशा ब्रज भाव को अपने कृष्ण आ रहे हैं, क्या होगा कैसे कृष्ण को देख कर क्या कृष्ण का भाव होगा, देख करके बलदेव और अपनों को संभाल नहीं पाया, क्योंकि देह देही अभिन्न उनका, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड हिज सोल, तो जो उनका अंतर के भाव उस शरीर में वही भाव प्रकट हुआ, तो ये महाभाव प्रकट हो गया, हाथ पैर कुर्म रूप में तरह संकुचित हो गया, करपल्लव चरण पल्लव सब अंदर घुस गया, विस्फोरित नयन, इस प्रकार दशा देवी सुभद्रा जी की वही हाल ब्रज की दशा देख करके, ये दोनों का जो इस प्रकार के बड़े बिल्कुल ऐसे शारीरिक विकार दशा, इस अवस्था में अर्धमूर्छित अवस्था, इस अवस्था में दारुक नंदीघोष रथ को ला करके तुरंत लाकर पहुंचाता है, कृष्ण बीकल होकर के परम उत्कंठा से कूद पड़ते हैं, जंप करके रथ से ब्रज भूमि को स्पर्श करते हैं, और इधर ब्रजवासी सभी और श्री राधिका के परम दशा हो चुका, बिल्कुल विरह के महाभाव अधिरूढ़ भाव अहाव उद्घरण्य स्थिति, ऐसे स्थिति ललिता जी के हाथ के ऊपर श्री राधा जी सर दे करके सो रही है, शरीर में प्राण है करके कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, आंख से आंसू भी निकलते सूख जाती है, इतने हाई टेम्परेचर, सांस लगभग रोकने दशा है, उद्घृण्य सता है, इतने दशा को सब बोले कि राधा जी है कि नहीं पता नहीं, वो केवल कृष्ण कृष्ण कह करके ललिता विशाखा उनके माँ कर्ण मंत्र पाठ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो ये खबर सुन करके समस्त वजवासी जो मृत्यु रूप में थे कि श्री जी श्री राधिका शरीर छोड़ रहे हैं, सुनकर सब विकल है कर दुख में दौड़ कर आ रहे हैं। इसी अवसर में श्री कृष्ण हा राधे हा राधे ब्रज भूमि में दौड़ करके जब कुंज वन में श्री राधिका की अवस्था कुंज वन की ओर दौड़ पड़े पागल होकर के कृष्ण, और देख करके ब्रज की दशा तरु लता गाय बछड़ा ब्रजवासियों की परम विरह दुखी दशा को देखकर राधा जी की इस अवस्था को देखकर के हा राधे कहकर तुरंत महाभाव दशा को चले गए राधा भाव में। उनका वही हाथ हुआ, हाथ पर से अंदर चला गया कुर्म रूप में और नयन विस्फुरित हो गया, अति अद्भुत महाभाव के रूप प्रकाश किए और मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर ब्रजभूमि में कुंज वन में गिर पड़े और इति अवसर में मंद समीर जमुना जी के वायु बहने लगा। जमुना जी के कोमल मंद सुगंध शरीर जब भगवान कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके उनके शरीर को गंध लेकर के श्री जी के पास पहुंचा, श्री जी के शरीर में गंध लगा, उनके नाक में कान में जब कि भगवान के अंग गंध प्रवेश किया इसी हवा के द्वारा, तो जैसे उनके अंदर मृत्यु संजीवनी की तरह काम किया। राधा रानी तुरंत आंख खोली तो राधा ललिता विशाखा उनको कृष्ण आ चुके हैं ये शुभ संवाद उनके कान में बोलने लगे, तो राधा रानी तुरंत ठीक हो गई, उठ करके प्राणवल्लभ को देखने लगी, दौड़ पड़ी प्राणवल्लभ को देख कर। इसी अवस्था में देख करके राधा रानी भी उनसे एकीकार हो जाते हैं। इसलिए राधा आलिंगित विग्रह जगन्नाथ ऐसे विशेष रूप उनका है, तीनों का ही दशा है। और इसी अवस्था में फिर जगन्नाथ के कान कान तो है ही नहीं, बिल्कुल कम से अद्भुत रूप था उनका विकार, वो ललिता विशाखा जी के इशारा किए थे, वो जाकर राधा नाम मंत्र गाए। श्री राधा मंत्र नाम सुन के जगन्नाथ जी फिर धीरे धीरे उठते हैं। तो इस प्रकार ये जो महाभाव के प्रकाश महाविरह के प्रकाश इस कृष्ण ब्रज और राधा की भाव में हा राधे हा ब्रज इस दशा में इस प्रकार अद्भुत विरह दशा शारीरिक दशा उनका, राधा रानी तो बिल्कुल समा गई और उनके साथ साथ दोनों भाई बलदेव और सुभद्रा। तो फिर जगन्नाथ ये वरदान दिए, नारद जी वहां पहुंच गए थे तो बोले कि देखो इस विशेष रूप को मैंने नित्य प्रकट कर दिखाऊंगा लोगों को, इस अमर दशा हुआ था, ये अत्यंत शुभ रूप जो है मेरा, सबसे वेद गुह्य रूप है, सबसे टफ सीक्रेट रूप है, उसको मैं नित्य नीलाचलपुरी में प्रकट करूंगा। और जो मेरे इस विरह के साथ ब्रज में फिर मिलाने का जो सहायता किए थे मेरे भाई और बहन बलदेव सुधा, उनको दोनों को साथ में लूंगा और रत्न वेदी पर इस हम रूप में और आयुध सुदर्शन के साथ में चतुर्धा विग्रह के रूप में हम प्रकट होंगे इस कथित कलिकाल में। इस रूप को दर्शन करके लोग अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा विग्रह चतुर्मूर्ति से रत्न वेदी पर विराजमान है। इस प्रकार उनको दस यात्रा करके ब्रज प्रवेश किए थे, यही भी एक रहस्य रथ यात्रा के। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।
परम पूज्य भक्ति हरि सिंह वैष्णव स्वामी महाराज की, हमारा परम